हाथ जोड़ लीजिए, आंखें भी बंद कर लीजिए और मेरे पीछे ये 12 अक्षर का छोटा सा मंत्र द्रु महाराज के द्वारा भगवान के दर्शन के लिए उच्चारण करने का आदेश नारद जी ने दिया था और हम आशा करते हैं कि भगवान भी हमारे जीवन में हृदय में प्रकट हों और अपने आशीर्वाद दें और मन को शांति दें ताकि हम भगवान की कथा में मन लगा सकें। तो आइए मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सब गांबा वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज भगवद गीता का 18 दिन का ये आपके मॉरिशस देश में 18 अध्याय भगवद गीता के और 18 दिनों में 18 जगहों पे अलग अलग जगहों पे भगवद गीता के ऊपर सत्संग हुआ है। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का गीत है और मानव मात्र को संसार के दुख कष्ट और तकलीफ और परेशानी से मुक्त करने के लिए भगवान ने और अपनी गोद में सबको बुला के बिठाने के लिए ये भगवद गीता का संदेश दिया है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 9वें अध्याय का नाम है भगवद गीता का राज विद्या राज गुह्यम योग, सब विद्याओं का राजा। राज गुह्यम जितनी भी गुप्त चीजें हैं, जितनी भी चीजें जो बहुत छुपाने की है उनमें से सबसे ज्यादा छुपाने की चीज है, गुप्त से गुप्त रहस्य की चीज है, वो भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने बताई है। और वो क्या है? वो है मन मना भव मद भक्त। भाव मद भक्त, मेरा भक्त बनो, मुझसे प्रेम करो, ये भगवान का सबसे अंतरंग, सबसे रहस्यमय, सबसे गुप्त संदेश है। आदमी किसी को प्रेम की बात होता है ना, कान में बोलता है मुझसे प्रेम करो, बाजार में जाके नहीं बोलता है ना। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं मुझसे प्रेम करो। अर्जुन ने पूछा आपसे प्रेम करें क्यों भाई, बाकी भी तो दुनिया में है, प्रेम करना है ना, बच्चों से करना है, परिवार से करना है, देश से करना है। तो भगवान ने कहा कि ये तुम जिसकी बातें कर रहे हो ये सब तो मुझ मेरे अंदर है, ये तो कोई मुझसे बाहर है ही नहीं। दसवां अध्याय भगवान ने शुरू कर दिया विभूति योग। भगवान ने अपनी विभूतियां बताई कि तुम किसकी पूजा करना चाह रहे हो, शंकर की, आदित्यानाम शंकरश्चास्मि, आदित्यों में नहीं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूं, जितने 11 रुद्र हैं उसमें शंकर मेरा स्वरूप है, मानो वो मेरी शक्ति है। बोले नहीं, विष्णु की उपासना, आदित्यानाम विष्णु हम आदित्य, 12 आदित्य हैं, आदित्य के बेटे, आदित्य के 12 बच्चे हैं, उसमें से भगवान विष्णु कहता मैं विष्णु हूं। नहीं, सूर्य की नमस्कार, बोला शशि सूर्य नेत्र, ये तो मेरी आंखें हैं। तो किसका आपको पूजा करना है, जिसका करना है वो तो मेरे अंश हैं, वो तो मेरी शक्ति से खड़े हैं। अच्छा, तो अर्जुन का भगवान हमको आप दिखाओ कि जो आप कह रहे हो कि ये सब आपके अंदर है, हम देखना चाहते हैं। अर्जुन बहुत बड़ा बुद्धिमान है, सरल बुद्धि वाला है, वेरी सिंपल, बहुत सरल है। हरे कृष्णा, आइए आइए माता जी आइए, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। देखो हमारे को लेने वाले आ गए, बहुत परेशान था, संभव कौन ले जाएगा आपको, अरे भगवान भेज देगा, हरे कृष्णा। पालिका ने क्या नाम आता जी का, पालिका में, ठीक बोला, हरे कृष्णा। तो हम कह रहे थे नवे अध्याय में, नवा अध्याय भगवत गीता का जो है उसका नाम है राजविद्या राजगुह्यम योग। तो वो राजविद्या राजगुह्यम क्या है, मन मना भव मद भक्तो, गुप्त सबसे चीज भगवान की है कि मेरे भक्त बन के मुझसे प्रेम करो। तो अर्जुन ने कहा आपसे ही प्रेम करें और किसी से नहीं करें। तो भगवान ने कहा किससे करना चाहते हो, नाम लो। तो माने अर्जुन ने कहा शंकर, तो बोला रुद्राणाम शंकर चास्मि, रुद्रों में शंकर तो मैं हूं, वो तो मेरी विभूति है, एक तो मेरी विभूति का माने एक आदमी है, उसको आप बोल नहीं मेरा आपको हाथ अच्छा लग रहा है, तो भाई तुम हाथ को मिलाना चाहते हो, हाथ मिला लो, ये मेरा ही हाथ है। नहीं नहीं, आपका गाल बहुत अच्छा लगता है, अरे मेरा गाल है ये, तो गाल एक देख लो कैसा है तुम्हारे को, बाल बहुत आपका अच्छे, हाँ ये मेरे बाल है, देखो तुमको ये अच्छे लगते हैं, इसको देखते रहो। तो एक ही आदमी के अलग अलग चीजें हैं, विभूतियां वो देख रहे हो। तो भगवान ने कहा रुद्रों में शंकर मैं हूं, आदित्यों में विष्णु मैं हूं, रवि अंशुमान और जो ज्योति देता है उसमें रवि सूरज में हूं, और नक्षत्रों में मैं शशि चंद्रमा में हूं, अब किसकी पूजा करना चाहते हैं मेरी करो। तो अर्जुन बड़ा बुद्धिमान है, कहता है ये आप कहते हैं सब आप में, हमें इसको देखना चाहता हूं, अगर आप कृपा करके मुझको दिखा दें कि आपने कहा है ये रुद्र ये विष्णु ये आदित्य ये चंद्र ये इंद्र ये वरुण ये सब आप में है, क्या आप दिखा सकते हैं महाराज, मेहरबानी करके दिखा दें। ये अर्जुन को तो विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण मेरा मित्र है और मैं उसको जानता हूं, लेकिन आने वाली पीढ़ी में कोई भी कहेगा मैं भगवान हूं तो आप क्या करोगे, कोई भी यहां बोले मैं भगवान हूं बड़ी परेशानी हो जाएगी ना, कितने भगवान इकट्ठे करेंगे। तो अर्जुन ने एक सावधानी के लिए हमारे को एक रास्ता बता दिया, कोई भी कहे भगवान हो उसको बोलना तुम्हारा विश्व रूप दिखाओ, तुम्हारे अंदर सारा ब्रह्मांड कहां है दिखाओ, तुम्हारे अंदर शंकर कहां है, ब्रह्मा कहां है, तो ये दिखाओ तो जरा। कोई भी कहे भगवान हूं, बहुत सारे हिंदू आपके यहां मॉरिशस में भगवान की मेहरबानी में इतना ज्यादा भगवान पैदा नहीं हो रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में एक रोज नया भगवान पैदा होता है, रोज एक नया भगवान पैदा होता है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे को। तो विश्व रूप दिखाओ, कि सारा विश्व आप में समाया हुआ है। तो सबसे बड़ी विभूति क्या है भगवान की? दसवें अध्याय का नाम क्या है? विभूति, विभूति योग। क्या नाम है दसवें अध्याय का? ऑपुलेंसेस ऑफ द एब्सोल्यूट, विभूति योग। अब सबसे बड़ी विभूति क्या है ये आपको मैं बता दूं। भगवान की सबसे बड़ी विभूति है भगवान का भक्त। भगवान की सबसे बड़ी विभूति है भगवान का भक्त। इसलिए भगवान ने दसवें अध्याय में चार श्लोकों में सारी गीता का सार बताया, चतुर्श्लोकी गीता। और उस चतुर्श्लोकी गीता में पता है क्या बताया है? भक्तों का लक्षण बताया है। पहला क्या भक्तों का लक्षण बताया है? सुनो, मच्चित मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये भक्त का लक्षण है। मच्चित्त, ये पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मालूम है? चित्र। क्या बोलते हैं? चित्र, फोटो बोलते हैं चित्र को, है ना। मच्चित्त, मद मतलब मेरा, चित्र बोला मेरा चित्र तेरी दिल में रखो। आपने देखा है आजकल वो दिल की शक्ल के लॉकेट बनते हैं, हार्ट की शेप के लॉकेट, हाँ, और उसमें जिससे हम प्रेम करते हैं उसका फोटो लगाते हैं ना, इसे खोल के देखें उसका फोटो लगा होता है जिससे हम प्रेम करते हैं। कोई अपनी पत्नी का लगाता है, कोई भाई का, कोई पति का, कोई गुरु का, किसी न किसी का लगाते हैं ना दिल में, है ना। ये लगाते हैं आप, मॉरिशस में होते हैं ऐसे फोटो, चल दिया है ऐसे दिल का फोटो, दिल खोलेंगे दिखेंगे इसके अंदर फोटो किसका है। भगवान कहते तेरी दिल में मेरा फोटो लगा दो, ये दिल का लॉकेट बनाओ, उसमें कृष्ण को छाप दो। ये तो बाहर का हुआ, लेकिन अंदर हृदय में मद चित्त, मन और चित्त, ये दोनों दो अलग अलग विभाग है एक ही चीज के। मन में समाचार सारे होते हैं लिखे हुए, और चित्त में सारे फोटो होते हैं। जैसे आपके पास कंप्यूटर में एक तो फाइल में फोटो होते हैं सारे के, हमारे इसमें फोटो है, और एक में सारा इंफॉर्मेशन होता है। तो चित्त में फोटो होते हैं सारे। अब जैसे कृष्ण नाम लिया तो एकदम माइंड बोलेगा, चित्त को बोलेगा कृष्ण बोल रहा है, कृष्ण बोल रहा है, कैसा है दिखाओ, तो एकदम फोटो वाली जगह से आएगा, बांसुरी बजा रहा है और सांवला सा खड़ा है टेढ़ा, तो उसका एक। और अगर अगर बाहर से एक शब्द आपने सुन लिया जिलेबी, तो मन बोलेगा जिलेबी जिलेबी, तो एकदम जाएगा गोल 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 गोल, मीठा मीठा दिखेगा, सब जिलेबी दिखेगी। तो अंदर फोटो सबके बने हुए, गाय तो गाय का फोटो आ जाएगा। तो ये चित्त अंदर में, तो भगवान कहते तेरे चित्त में मुझको बिठा दो। तो किसी ने भगवान को चित्त में बिठाया ऐसा आपको उदाहरण कोई दुनिया में मिलेगा? आपके मॉरिशस में कोने कोने में यहां का हीरो है हनुमान, और हनुमान ने मां सीता ने जब उसको हार दिया नौलखा, तो हार के मोती को दांत से तोड़ रहा था, बोला क्या कर रहा है, इतना बहुमूल्य कीमती हार है, बहुत कॉस्टली है, क्या कर रहे हो? बोले देखता हूं इसमें सियाराम है। बोले इसमें सियाराम? क्या तुम्हारे अंदर है क्या? बोला हां, देखो मेरी मां, ये देखो सियाराम। ऐसे हनुमान जी खोला छाती अपना और सीताराम अंदर दिखाया, दिखाया दिखाया, ऐसे फोटो है ना मॉरिशस में ऐसे। इसको बोलते हैं मच्चित्त। भक्त ऐसा जिसके चित्त में भगवान सदा निवास करे, थोड़ी देर के लिए भी भगवान का फोटो वहां से जाए नहीं। लाइट जाती है तो टीवी का फोटो गुम, ये तो आपके अंदर की लाइट नहीं जानी चाहिए। अब यहां एक बहुत विशेष बात आपको बता दूं, जब शरीर छोड़ने का समय आता है ना, तो ये शरीर तो यही होता है, कोई ले जाता है क्या शरीर को यहां से? आदमी जब मरता है मॉरिशस में तो उसका शरीर उड़ जाता है कि पड़ा होता है? पड़ा होता है ना। तो यमदूत किसको ले जाते हैं? आत्मा को, सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा बंद होती है। जैसे आप बाजार में कोई चीज लेने जाओ तो चीज को हाथ लगाओगे तो वो एकदम किस में डाल के देगा? बैग देगा, पॉलिथिन में डालेगा, बोला ले जाओ, ऐसे ना। सब्जी खरीद ली तो किस में डाल के आओगे? पॉलिथिन में डाल के आओगे ना। तो ये आत्मा जो है अंदर एक वो बैग बनी हुई है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। वो बना हुआ किसका है सुन लो, उस बना हुआ है मन बुद्धि चित्त और अहंकार का। तो जब यमदूत आएगा और उस थैली को हाथ लगाएगा तो उस चित्त के अंदर भगवान का चित्र देखेगा तो क्या करेगा, तो हट के प्रणाम करेगा, अरे इसको हाथ मत लगाओ, यहां तो भगवान बैठा है। और तब उसको एकदम याद आ जाएगा कि एक बार यमराज ने हमको समझाया था, हमने एक गलती कर दी। भागवत में कथा आती है, अजामिल ब्राह्मण था, जैसे आप लोग सब भारत से आए हो, आपकी संस्कृति वैदिक संस्कृति है, आप सनातन संस्कृति के हो, लेकिन बहुत दूर आ गए वहां से, अपने मूल स्थान से हजारों हजारों मील दूर आ गए। शाबाश है आपको कि आपने संस्कृति को संभाल के रखा है, फिर भी बच्चों के अंदर संस्कार पाश्चात्य संस्कृति के ज्यादा हैं। स्कूल में वाले जाने वाला बच्चा, कल आपका ही एक लड़का हमको एक सत्संग में बता रहा था, समझदार बड़ा लड़का अभी नौकरी कर रहा है, कि स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ने जाएं, अगर हम दोस्तों के साथ सिगरेट न पिए, शराब न पिए, और एक लड़की में अपनी सहेली नहीं बनाए तो लोग हमको समझते हैं कि ये मूर्ख है, वो हमारा इज्जत नहीं करते हैं। तो ये आपकी संस्कृति के ऊपर बहुत ज्यादा धब्बा लग गया पाश्चात्य देश का। अजामिल का भी ये हाल हो गया, ब्राह्मण था, जा रहा था, हरे कृष्णा, राम कृष्ण जा रहे हैं क्या, ये कृष्ण को कथा सुना रहा हूं ना, इसको अभी कॉलेज जाना है, उधर ये तीनों काम नहीं करने हैं, हरे कृष्णा। ये सत्संग हमारा, इस सत्संग का पता है क्या उद्देश्य क्या है असल में, हमसे कभी बोलते हैं कि भारत में आप सत्संग करते हैं आपका क्या उद्देश्य है, तो हमारी संस्था का उद्देश्य तो ये है कि लोगों को कृष्ण भक्त बनाना है, लेकिन हम हमारा व्यक्तिगत में हमारा अपना उद्देश्य थोड़ा कुछ और है। हमारा उद्देश्य है, पहले आपके यहां अभी पोलियो के ड्राफ्ट कभी पिलाते हैं, डिप्थेरिया का टीका लगाते हैं, या कोई बीमारी ना हो जाए तो, पहले स्मॉल पॉक्स हुआ करती थी किसी जमाने में, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन करना, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का अर्थ क्या होता है, इम्यूनाइजेशन का अर्थ है बीमारी के तो जरासीम रहेंगे, बीमारी के कीटाणु चारों ओर रहेंगे, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे, आपको बीमारी नहीं लग सकती। तो हमारे सत्संग का उद्देश्य होता है, हम अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को जो सत्संग में आती हैं माताएं, इनको टीका लगा दें, इनको इम्यूनाइज कर दें, ताकि ये पाश्चात्य संस्कृति के बुरे संस्कार, इसका नाम संस्कार नहीं है, ये विकार है, इसको विकार बोलते हैं, विकार, विकृति का मतलब बिगड़ा, विकृति करते हैं बिगड़ने को, बिगड़ा। दूध जब फट जाता ना, उसको बोलता दूध को विकारित हो गया है, फट गया। तो विकार से बचाने के लिए, संस्कार की सुरक्षा के लिए हमारा सत्संग इम्यूनाइजेशन है। क्या है, हर मां चाहती है बच्चे को पोलियो का दो कतरा पिला दूं ताकि टांग टेढ़ी ना हो जाए, ऐसे हर मां को हर बाप को सोचना चाहिए कि बच्चे को मंदिर में ले जाऊं कि इसका दिमाग टेढ़ा ना हो जाए। उसमें टांग टेढ़ी होती है कोई बात नहीं, इसमें दिमाग टेढ़ा होता है तो मां बाप की भी नहीं मानता है, मां बाप का दिल अंदर बहुत जलता है जब बच्चे को ऐसे बुरे विकारों में देखता है, मां बाप बहुत दुखी होता है उसको देख के, पीड़ा होती है। तो अजामिल ऐसा ब्राह्मण का बच्चा था, लेकिन लकड़ी लेने गया था जंगल में यज्ञ के लिए, लेकिन एक नीच विकृत संस्कार से गिरे हुए व्यक्ति को, किसी वेश्या को, किसी स्त्री को आलिंगन करते हुए देखा और उसके मन में विकार आ गया, ब्राह्मण के सारे संस्कार के ऊपर पानी फिर गया, उस वेश्या से विवाह कर दिया, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपने माता को, परिवार को छोड़ दिया, उस वैशा के संग में बच्चे पैदा किए, उसके लिए जुआ किया, चोरी किया, डाके डाले, लोगों का खून किया, हत्याएं की, सारे पाप दुनिया के जुआ समेत सब किए, लेकिन बहुत बुढ़ापे में एक लड़का हुआ। कहते हैं कुछ संतों का कृपा हुआ, कुछ साधु देखा ये ब्राह्मण का बच्चा है, संस्कार तो अच्छे थे इसमें, अब थोड़े विकार आ गए हैं, इसको सुधारना चाहिए। लेकिन कहेंगे इसको कि तुम सुधर जाओ तो ये तो हमको डंडा मार के भगा देगा यहां से, क्या करना चाहिए? बोला चलो चलते हैं इसके घर। जाके दरवाजा खटखटाया तो अजामिल की घरवाले ने कहा कि महाराज हमारे घर में बच्चा हुआ है, और जब बच्चा होता है तो 7 दिन 10 दिन हम साधु को अन्न नहीं दे सकते, सूतक लगा हुआ है। यहां भी सूतक होते हैं ना, क्या बोलते हैं सूतक को, घर में कोई मर जाता है बच्चा होता है तो पूजा नहीं कर सकते 7 दिन 10 दिन 7 दिन पूजा नहीं करते, ऐसे मर्यादाएं हैं। और बोला मेरा पति आएगा, वो बहुत बड़ा झगड़ालू है, आप महाराज लोग, बोला हम कुछ लेने नहीं आए हैं, तुमको सूतक नहीं ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण पता है किसको बोलते हैं, ये सूर्य ग्रहण लगता है, पूरा सूरज ही नहीं दिखता है। बोला तुम्हारे को सूतक थोड़ी है, तेरे को ग्रहण लगा हुआ है, सारा ही काला है तेरा अंदर बाहर। बस एक हम तुमसे विनती करने आए हैं कि तुम्हारा बच्चा हुआ है ना, इसका नाम नारायण रख देना। इसने बोला है किसी पंडित को बुला के 10 रुपए देने पड़ते, ये अपने आप आए साधु, चलो इसकी बात मान लेते हैं, इसमें क्या। लेकिन संत बड़े बुद्धिमान थे, साधु ने कहा इसको बोलेंगे तुम नारायण नारायण जपो तो ये हमको डंडा मार के भगा देगा। लेकिन अब दवाई जब कड़वी होती है ना, पुराने जमाने में जो वैद्य होते थे वो कड़वी दवाई के लिए कहते थे इसको मधु में डाल के खाना, मीठे रस में डाल के खाना, दवाई कड़वी है लेकिन रस मीठे में डालोगे तो कड़वास कम हो जाएगी। तो भगवान का नाम तो लेने में कड़वा है बहुत, नहीं लेगा ये बहुत बड़ा कलयुग का व्यक्ति जैसे होता है आजकल का। प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है आजकल कलयुग के लोगों को हरे कृष्णा जपाना घोड़े को दबा देने के बराबर है, 6 आदमी चाहिए, 4 आदमी टांगे पकड़ेंगे, 1 आदमी मुंह गोलेगा और 6ठा आदमी उसमें दवा डालेगा। कलयुग में किसी को हरे कृष्णा जपाना घोड़े को दवा देने के बराबर है। घोड़े को दवा देते हुए कभी देखा है? 4 पांव को 4 आदमी पकड़ेंगे नहीं तो लात मारेगा, 1 आदमी मुंह खोलेगा, 1 उसमें दवा डाल, 6 आदमी चाहिए। इसलिए संकीर्तन करने हम मृदंग खड़ताल और ये सब उठा के 10-20 जाते हैं कि 1-2 तो घोड़ों को दवा दे दे। हरे कृष्णा। तो कहा कि पुत्र के मोह की मधुरूपी मिठास में ये नारायण की कड़वी दवा जामिल को पिला देते, पुत्र मोह के मधुरूपी मिठास में नारायण नाम का कड़वा दवाई दे दिया। आप अजामिल बोले नारायण किधर गया, नारायण इधर आओ, नारायण पानी पिलाओ, नारायण भोजन कराओ, नारायण तुम कहां गया, चप्पल लेकर आओ। हम जपे 16 माला, वो जपे 20 माला रोज नारायण की, नारायण नारायण सारा दिन नारायण कर रहे। इसलिए पुराने जमाने में हमारे बच्चों के नाम होते थे गोपाल गोविंद राम कृष्ण नारायण, अब नाम है टिंकू पिंकू लिंकू मिंकू, अरे उसका कोई अर्थ नहीं है। लड़कियों के नाम कैसे हैं, पिंकी और इल्ला बिल्ला मिल्ला, क्या हो गया है, भूत खा गया है सबको। अच्छे नाम रखते थे संस्कार में, तो घर में राम राम का नाम जपा जाता था, पूरा दिन अपने आप हो जाता था। तो अजामिल उस बच्चे को लेके कहीं जा रहा था, अचानक बूढ़ा तो था ही, गिर पड़ा और देखा बहुत भयानक जमदूत फांस लेके गले में डालना चाहते हैं। डर लगा और बुलाया नारायण, बहुत चिल्लाया बच्चे के लिए, अपने बेटे को बुला रहा था। उन्होंने गले में फांसी डाल दी, निकाल रहे थे अंदर से सूक्ष्म शरीर को। इतनी देर में 4 बहुत सुंदर 4 हाथ वाले विष्णु दूत वहां पधारे। बोला इसको छोड़ो, तुम इसको नहीं ले जा सकते। बोला आपको मालूम है, यमदूत ने कहा ये पापी है, इसने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए, इतने पाप किए हैं, यमराज के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, जगह नहीं बची है उसमें, इतने पाप किए हैं इसने।
कोई किताब बाकी नहीं बचा है, ये तो जाएगा नरक में।
बोला आपको मालूम है इसने अंत में नारायण का नाम लिया?
अरे बोला अपने बेटे को बुलाया।
बोला बेटे किसी का नाम नहीं, नारायण वैकुंठपति का नाम है, हम उसके दास हैं, तुम इसको नहीं ले जा सकते। यमदूत कहते ऐसे कैसे होगा? बोला हाथ मत निकालो गले से फांसी। यमदूत वापस गए यमराज को, बोला महाराज आप हमारे मालिक हैं या और कोई भी है यहां? हम गए थे आपने कहा उसको लेने, आज तक जिसको लेकर लेने जाते सबको लेके आते, आज तो चार आदमी कोई और खड़े हो गए आकर मांगे, वो छुड़ा के ले गए। बोला क्या हुआ? बोला वो मरते समय उसने पता नहीं क्या अपने बेटे नारायण को बुलाया, वो चार नारायण के दूत आ गए। ओ यमराज ने कहा मैं गलती हो गई मुझे, मैंने आपको ये नहीं बताया था पहले कि कोई मरते समय अगर हरे कृष्ण बोल दे तो उसके नजदीक मत जाना, किसको ऐसा तिलक लगाया हो ना उसको दूर से ही देख के भाग के आ जाना, उसके पास मत जाना। और वृंदावन में कहते हैं एक आदमी ऐसे मर गया बेचारा, ऊपर से कबूतर जा रहा जा था कोई, या तो या कबूतर तो कबूतर लेकिन वो कौवा जा रहा था क्रो, वो उसने ऊपर से कुछ गिरा दिया, वो इधर गिरा तो ये निशान ऐसे हो गया। यमदूत आए बोला इसको लेने आए हैं, अरे नहीं नहीं इसको तिलक छोड़ दो। वो उनको डर लगा कि तिलक वाला है कहीं ऊपर ले जाऊं फिर मुसीबत हो जाए, तो डाउट का फायदा उसको मिल गया। तो ऐसा तिलक लगा हुआ होगा तो यमदूत नजदीक नहीं आएगा। तब से यमराज ने कह दिया कि जो भगवान का नाम उच्चारण करता है उसके नजदीक तुम नहीं जाना, वो तुम्हारे ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। तो उसने बोला एक बार नारायण नाम जपने से क्या मुक्त हो जाएगा क्या? बोला उसके बाद अगर कोई पाप नहीं करे तो, एक बार नारायण नाम जपे और फिर मृत्यु आ जाए और कोई पाप नहीं करे तो सारे पुराने पाप एक बार नाम जपने से समाप्त हो गए। एक बार भगवान का नाम अगर लिया जाए तो इतना जीवन में आदमी कोई पाप कर ही नहीं सकता, वो एक नाम सब पापों को नाश कर सकता है। तो भगवान का जिसका मन भगवान में लगा है, चित्त में भगवान का चित्र है, उसको यमदूत दूर से नमस्कार करके चले जाएंगे। बोला ये तो वैकुंठ से विमान आएगा, इनको ले जाएगा, इनके गले में फांसी हम नहीं डाल सकते, फांसी डालें सूक्ष्म शरीर में वहां तो भगवान जी बैठा हुआ है तो उसको कैसे हाथ लगाएं। तो ये बहुत बड़ा अभिज्ञान है कि भगवान में मन लग जाए, भगवान के भक्त बन जाए तो ये सबसे बड़ी विभूति है। सबसे बड़ी विभूति दसवें अध्याय की है, भगवान का भक्त बनना। जो भगवान का भक्त है वो यमदूतों से मुक्त है क्योंकि उसके मन में भगवान बसते हैं। मद चित्त, तो फिर भगवान ने कहा मदगत प्राण, मद मतलब मैं, गत मतलब वहां से निकल गया, प्राणा प्राण दे देंगे फिर वो जीवित नहीं रहेंगे। एक बार उनको मेरी याद नहीं आई, विस्मृति हो गई, भूल गया जब मुझे, मेरा फोटो अंदर से गुम हो गया थोड़ी देर के लिए, तो वो प्राण दे देंगे, वो जीवित नहीं रहेंगे, वो रह नहीं सकते। कोई ऐसा उदाहरण कि भगवान का चित्र न रहे तो प्राण नहीं रहेंगे? जिस दिन अर्जुन द्वारका से वापस लौटा, भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए अपनी लीला समाप्त करके, अर्जुन बहुत दुखी जब दरबार में आया, महाराज युधिष्ठिर ने जब पूछा तो बहुत दुखी था। कुंती मां अंदर बैठी हुई कहती अर्जुन पहले मेरे पास आके मेरे चरण को स्पर्श करता है, आज अर्जुन मेरे पास क्यों नहीं आया? किसी ने कहा कि मां अर्जुन तो कुछ द्वारका की बात बता रहे। बोला क्या? बोला याद सब यदुवंशी और भगवान श्री कृष्ण धराधाम से स्वधाम चले गए। इतना सुना है नहीं सुना माने, माने के चले गए समाप्त, बस सांस नहीं लिया उसके बाद। मदगत प्राणा, वो अगर मेरे नहीं रहे तो मैं नहीं रहूंगा, हमारा जीवन बेकार है। उसी वक्त युधिष्ठिर ने अपना ऐसे मुकुट उतार के नीचे रखा, बोला राज कृष्ण ने दिया था करने को, कृष्ण नहीं है तो राज नहीं करेंगे। बाल खोले, बोला आज से राज का भोग नहीं करेंगे,
राज की कोई सुख सुविधा हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो भीम बैठा था पास में, बोला भाई आप नहीं अगर करेंगे राज तो ये मुकुट मेरा भी यहां पड़ा है, ये तो कृष्ण ने कहा था इसलिए राज कर रहे हैं, हमको राज नहीं चाहिए। अर्जुन ने अपना मुकुट उतार के नीचे रखा, नकुल सहदेव ने मुकुट नीचे रख दिया, राजपाट का परित्याग किया, छोटे से परीक्षित को बुला के राज तिलक किया, बहुत रो रहा है, कहां मुझे छोड़ के जा रहे हो सब लोग आप। बोला जिसके कारण हम राज कर रहे थे वो चले गए, तो अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब हम ऊपर वापस जा रहे हैं उनके पास। उधर मां कुंती की अर्थी है, उधर परीक्षित का राज अभिषेक हो रहा है, उधर उधर ये पानी पांडव बाल खुले हुए हैं, और फिर पांडव और द्रौपदी सर्ग आरोहण के लिए बद्री का आश्रम की तरफ चल गए। तो भगवान नहीं रहेंगे जीवन में, तो जीवन हमारा किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है, मदगत प्राणा। तो फिर कैसे भक्त जीते? बोला मदगत प्राणा, अगर मैं हमारी मेरी स्मृति नहीं रहेगी, भगवान श्री कृष्ण रहेंगे उनको, उनकी दिल में मेरी स्मृति नहीं बनी, इसलिए मंदिर बनाए गए हैं कि सुबह सुबह आओ भगवान को बहुत नजदीक से देखो, सारा दिन उसकी छवि आपकी दिल में जम पड़ी रहे, फिर शाम को एक बार तीन बार आरती में कम से कम आओ, अगर नगर नजदीक में रहते हो तो मंगल आरती का दर्शन करो, दर्शन आरती का दर्शन करो, सायन आरती तो शाम को जाके देखो भगवान का, पूरे दिन आपके आज आंखें बंद करके यहां देखें तो राधा गोलोक आनंद बिल्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है, बहुत बिल्लू सुंदर ड्रेस पहनी हुई है, पीछे मोर है, मोर के पीछे चार पांच पांव पंखे ऐसे हैं, पांव में आज क्या है, पायल कौन से कलर की है, इतना ध्यान से उसको देखो कि पूरा दिन आपका भगवान का वो श्रृंगार आपके मन में बसा रहे, इसलिए मंदिर बनाए हैं कि आपका मन भगवान के अंदर ऐसा लगे कि एक दिन तो उसकी स्मृति में रहे, और रात को कृष्ण कथा सुन के सो जाओ, तो सुबह उठो फिर मंगल आरती का दर्शन करो, तो एक दिन भगवान साक्षात आपके हृदय में आके बैठ जाएंगे। बोला भक्त फिर जीते कैसे हैं? बोला बोधयंत परस्परम, वो एक बोलता है कथा कृष्ण की, वो थक जाता है तो दूसरा बोलना शुरू कर देता है, फिर वो सुनना शुरू कर देता है, वो कथा पूरी करता है तो वो सुना, बोधयंत परस्परम। बोला कोई सुनाने वाला सुनने वाला नहीं हो तो कथ्यंतश्च माम नित्यम, नित्य मेरी कथा करता रहता है, मेरे कथा करता रहता है, मेरा सत्संग करता रहता है, तो क्या मिलता है उसको, तुष्यंति च, बड़ा संतुष्ट हो जाता है, मेरी कथा में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है। भगवान की कथा करने का अर्थ है भगवान से मुलाकात करना, भगवान का नाम जपना मतलब भगवान से मुलाकात करना, भगवान से रोज मिलना, भगवान से रोज भेंट ले करना, भगवान से रोज साक्षात्कार करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का नाम जपना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का प्रसाद खाना, ये सब भगवान से भिन्न नहीं है, ये भगवान के समान ही है। बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंति, बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, और फिर रमन्ति च, बड़े आनंद में रहते हैं, क्योंकि मैं उनके हृदय में बसता हूं इसलिए वो आनंद में रहते हैं। जिसके हृदय में भगवान बसता है उसको ही केवल आनंद मिलता है, बाकी दुनिया में सब दुखी है, दुनिया सारे में सब दुखी है, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सो जिस नाम आधार, दुनिया में सारे दुखी हैं, केवल सुखी वो है जिसने भगवान के नाम का आधार ले लिया है, सहारा ले लिया है, भगवान के नाम को जीवन में जोड़ दिया है। राम आनंद कंद है, रमंती का मतलब राम उच्चारण करने से आनंद, अंदर में आनंद का अनुभव होता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे मेरे भक्त होते हैं, वो मेरी बड़े से बड़ी विभूति है, तेषाम इनके लिए सतत युक्ता नाम, जो सदा के लिए मुझसे जुड़े हुए हैं, बड़े प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, बड़े प्रेम से मेरा भजन करते हैं, जब भजन करते हैं इतना उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है कि आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, नयनम गद अश्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकय निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति,
ये महाप्रभु कहते हैं वो दिन कब आएगा जब भगवान आपके नाम का उच्चारण करें, आपकी कथा सुने, आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगे, गला रुंध जाए, सारे शरीर में रोमांच हो जाए, ऐसा दिन कब आएगा? ये भगवान के नाम लेने की परिकाष्ठा है, ये नाम में रुचि होगी। जैसे आपको देखा है कभी आपका कोई बहुत सगा संबंधी, अपना पति अथवा बेटा किसी दूसरे देश में होके यहां इंग्लैंड पढ़ने गया और उसका कोई नाम लेगा तो दो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे कोई उसका नाम लेता है ना, देखा है कभी? जो आपका दूर हो, आपके घर से बेटा हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, और एक साल छह महीना बाहर दूर गया और कोई उसका नाम ले अथवा कोई उसकी चीज घर में देखे, वो उसका कोट पड़ा है, ये तो मेरे पति का कोट है कि मेरे भाई का कोट है, तो आंखों में दो आंसू आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं आप लोगों को? हाँ, मोरे सच में आते हैं? ऐसे रोना आता है कि नहीं आता है? आता है। ऐसे भगवान से बिछड़े को पता नहीं कितने जन्म हो गए, उसका नाम लेते हुए आंखों से अश्रु, इसको बोलते हैं विरह। विरह बोलते हैं। महाप्रभु विप्रलंबा भाव में थे, विरह में होते थे, गंभीरा में रहते थे, जगन्नाथपुरी में आंखों से आंसू, आंखों से आंसू कभी तो ऐसे निकलते जैसे जैसे शरीर से कोई दवाई बाहर डाल रहा हो। आज ही अभी हम पढ़ रहे थे जगन्नाथ भगवान के सामने नृत्य करते हैं, महाप्रभु की आंखों से जैसे सुई से दवाई निकलती, ऐसे आंखों की धाराएं बह रही थी। वो देख रहे थे जगन्नाथ को, उनको जगन्नाथ मंदिर में जब महाप्रभु जाते थे तो उनको त्रिभंग ललित श्याम सुंदर बंसुली दिया हुआ लिया हुआ हाथ में दिखता था, और चेतना महाप्रभु श्री कृष्ण राधा भाव में है, और भगवान जगन्नाथ कृष्ण राधा की जुदाई में है। चेतना महाप्रभु कृष्ण की जुदाई में है और जगन्नाथ राधा की जुदाई में है। एक दूसरे को देखते हैं तो बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं, ददामी बुद्धि योगम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि भगवान ने सबको दी है लेकिन बुद्धि योग सबको नहीं दिया है। बुद्धि तो सबको दी हुई है, अकुल तो सबको है, दो टाइम की रोटी खाने की सबको अकल है, कमाने की सबको अकल है। बुद्धि योग भगवान किसी को नहीं देता है। बुद्धि योग उसको देता है जो अपना जीवन सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से सदा के लिए। एक तत् का अर्थ है सतत, सतत तत् का एक अर्थ है तार, जैसे तार होती है ना बीना में, और जिसको नारद मुनि लेके हाथ में बजाते हैं और बजा के फिर नृत्य करते हुए गाते हैं, तो तत् का अर्थ है जो बड़े आनंद से ढोल पीट कर, नगारा पीट कर, खड़ताल बजाकर शहर के बीच में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जो गाता है, छुप के नहीं करता है, सरयान बाजार के बीच में खड़े होकर ढोल को पीट के बोलता है हरे कृष्णा, इसको बोलते हैं सतत। सतत का मतलब सब जगह और खुले बाजार में खड़े होके, तिलक लगा हुआ है, चोटी रखी हुई है, धोती पहनी हुई है और खड़ताल हाथ में है, कीर्तन कर रहा है, ऐसा मेरा भक्त होता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। ददामी बुद्धि योगम, उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। ये नमाम उपयांति में, उसके द्वारा वो मेरे पास आ जाता है। अरे उसके आने में देर हो लग जाए, उसकी दिल में अभी तक कुछ कचरा पड़ा हो, तो अर्जुन ने मानो पूछा के फिर उसका मन कहीं चला जाए, तो भगवान तेषाम एवानुकंपार्थम, ऐसे मेरे भक्त का मन अगर थोड़ा भटकता मैं देखता हूं तो मैं कांपने लगता हूं। अरे मेरा भक्त घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब दुनिया छोड़ी और अभी इसके हृदय में ऐसा कहां से आ गया? भगवान कंपा, अनुकंपा, कंपन कंपा है ना, कंपना, बहुत बहुत मुझे लगता है कि क्या हो गया मेरे भक्त को इतना। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जतम नास्यामि आत्म भाविस्तो ज्ञान दीपेन बात, मैं उनके हृदय में परमात्मा बैठा हूं ना, मैं अंदर से ही उसके खारे कचरे को साफ कर देता हूं, ज्ञान का ऐसा लाइट जलाता हूं कि उसके अंदर अंधेरा हो नहीं सकता है। अंधेरे पर मैं पाप करेगा ना, मैं उधर प्रकाश कर दूंगा। कहां से करोगे? बोले मैं अंदर बैठा हूं ना, उसको तो मैं अंदर से ऐसा चमका दूंगा कि वो मेरे अलावा और किसी को देखेगा ही नहीं। ये भगवान ने अपने भक्त के लक्षण चार श्लोकों में लिखे हैं। लेकिन ऐसा भक्त बनने के लिए भगवान की इस भगवद गीता में जहां ये चार श्लोक हैं, इसको पहले तो दो हाथ जोड़ के लेना पड़ेगा। भगवान का ये वाणी है, भगवान की वाणी भगवद गीता को बड़ी लालच के साथ, बड़े लोभ के साथ, बड़े प्रेम के साथ लेना चाहिए। मुझे दीजिए, जैसे प्रसाद के लिए जब प्रसाद बढ़ता है तब देखा है कैसे करते हैं, ए मेरे को दो, मेरे को दो, दोनों हाथ लंबे करते हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा प्रसाद है, इसको लेने के लिए बहुत बड़ा उत्साह होना चाहिए। उत्साह का मतलब बहुत बड़ा आनंद आना चाहिए, अरे आज तो भगवान को हम अपने घर साथ ले जा रहे हैं। और फिर इसको बैठ के पढ़ना चाहिए, फिर भक्तों के संग में इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान इसके शब्दों के अंदर आपसे मिलने को तैयार हैं। आपके पास अगर है तो किसी, आपको अगर सुख मिला है तो किसी और आपका मित्र हो, आपका सगा संबंधी हो, कोई आपका जिसको आप चाहते हो उसको भी सुख मिले, तो उस तक इसको पहुंचाने का प्रयास करो। मिठाई का डब्बा किसी को गिफ्ट में दोगे, खा के दूसरे दिन में बेकार कर देगा। खिलौना दोगे तो चार दिन के बाद किसी काम का नहीं। ये अगर देगो तो उसकी सात पीढ़ी इसको पढ़ती रहेगी तो सुखी रहेगी। ये भगवद गीता इस महीने में गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन हुई है, अभी तक गीता जयंती का उत्सव चल रहा है। आप सब बहन भाइयों से, हमारा माताओं से ये प्रार्थना है कि स्वयं अगर पास है तो पड़ोसी तक पहुंचाने का प्रयास करो। कृष्ण के प्रेम प्राप्त करने का ये बहुत अच्छा और बहुत दुर्लभ अवसर है, इसको हाथ से मत गंवाना। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके, 42 मिनट्स, इनफ। तो कोई गीता लेता है तो मैं साइन करके दे दूंगा आज अभी।
जी
पूछ लो।
हरे कृष्णा। तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग भगवद गीता लाए हैं, जिन लोगों के यहाँ गीता